हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 36। असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि मन को वश में करना चंचल है और कठिन है, लेकिन असंभव नहीं बोला था। और उपाय भी भगवान बता रहे हैं, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। एक इससे बड़ी प्रेरणादायक बात ये रहती है कि जब हम भगवान में मन लगा रहे हैं और मन कहीं और चला जाए तो इससे व्यक्ति को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। प्रायः ये भक्तों को निरुत्साह करने के लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो जप करने का क्या फायदा। ये बहुत निरर्थक बात है, क्योंकि जीभ से उच्चारण करने से ही व्यक्ति शुद्ध होने लग जाता है और फिर वो ध्यान से सुने तो कहना ही क्या। तो इसलिए इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि हमारा मन चंचल क्यों है। मन का तो स्वभाव ही है, स्पेशली भौतिक मन का। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियमित करने का प्रयास नहीं कर रहा है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, उसके लिए आत्म साक्षात्कार का अभ्यास ही मुश्किल होता है। और अगर अभ्यास मुश्किल होगा तो आत्म साक्षात्कार में फिर सफलता प्राप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए मन को संयमित करना, और मन का संयमित करने का अर्थ है इंद्रियों को संयमित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, नेसेसरी है। इसके बिना तो हम काम चला ही नहीं सकते, इसके बिना तो हम योग में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि भले ही ये कार्य कठिन हो लेकिन मन को कृष्ण में लगाना जरूरी है। तात्पर्य को देखेंगे। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। इसको ऐसे समझेंगे जैसे हम अपनी चेतना को बहिर्मुख और अंतर्मुख दोनों एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप बाएं भी मुड़ें और दाएं भी मुड़ें, आप आगे भी जाएं और पीछे भी जाएं, तो ये संभव नहीं है। या तो हम आगे जाएंगे या हम पीछे जाएंगे, या तो हम दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि हम अपनी चेतना को या तो अंतर्मुखी कर सकते हैं या फिर बहिर्मुखी कर सकते हैं। इन शब्दों को तो मैं नहीं समझाऊंगा, पहले के श्लोक हमने समझाए हैं। लेकिन अंतर्मुखी चेतना के लिए हमको भगवत विषय कार्य करने होते हैं, भगवान संबंधित कार्य करने होते हैं, और उससे हमारी चेतना भगवान की तरफ मुड़ने लगती है। तो अगर ऐसे कार्य व्यक्ति कर रहा है जिसमें वो भगवान के प्रति भी कार्य कर रहा है, भगवान संबंधी कार्य भी कर रहा है और भगवान से विमुख करने वाले कार्य भी कर रहा है, तो उसकी प्रगति थोड़ा डामाडोल होगी। और ये हम सभी की स्थिति होती है। वैसे तो देखिए भक्ति करने से धीरे धीरे प्रगति होती ही है, लेकिन भक्ति के अनुकूल क्रियाओं करने से और प्रतिकूल का वर्जन करने से व्यक्ति तेजी से प्रगति करता है। तो इसलिए अगर भौतिक व्यवसाय में, व्यवसाय का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा भौतिक वार्ता में, भौतिक चर्चाओं में अगर अपने मन को लगाए रखेंगे, इंद्रियों को लगाए रखेंगे, तो फिर आध्यात्मिक प्रगति करना मुश्किल होगा। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। श्री प्रभुपाद इस संबंध में बोलते थे कि 16 माला का जप कर रहा है कोई व्यक्ति, भगवान का नाम जप कर रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ अगर वो 4 नियमों का पालन करता है तो तुरंत उसकी भक्ति में प्रगति होती है। तो ये दोनों ही करना आवश्यक है अगर हम भक्ति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर व्यक्ति सोचे कि मैं 4 नियमों का पालन नहीं करूंगा और फिर भी मेरी भक्ति में प्रगति होगी, तो बहुत स्लोली प्रगति होगी, बहुत स्लो प्रगति होगी। तो दोनों चीज़ों को करना आवश्यक है। हम भोग के क्रियाओं को रोकें और साथ साथ नाम जप करें, भक्ति का अभ्यास करें। नहीं तो आप उदाहरण देख ही रहे हैं, हम अग्नि जलाना चाहते हैं उसके बाद जल डालते रहेंगे तो फिर कैसे प्रज्वलित होगी अग्नि। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। निग्रह का अर्थ होता है कि मन कहीं पे भी जा रहा हो वहां से खींच करके उसके भगवान के चरण में लगाना और अपने इंद्रियों को हर उस कार्य में ना लगने देना जिसमें वो करना चाहती हैं अपनी गलत प्रवृत्ति के अनुसार। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है ताकि शरीर स्वस्थ हो उसके बाद वो भोग करे तो ये सब योग का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। इसको हमने समझाया था कि प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाने का अर्थ है प्रेमा भक्ति की अलग अलग क्रियाओं में लगा रहे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन इत्यादि, ये सभी आध्यात्मिक स्तर पे हैं, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हैं और इसके द्वारा हम साक्षात भगवान के संपर्क में आते हैं। तो व्यक्ति अलग अलग समय अलग अलग क्रियाओं को करके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। मन को स्थिर, एक मिनट, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए सफलता नहीं मिल पाती है। किंतु इंटरेस्टिंग है कि कृष्ण भावना भावित वाले को योगाभ्यास का फल अपने आप मिल जाता है क्योंकि योगाभ्यास का उद्देश्य है अपने मन को कृष्ण में लगाना और भक्ति में लगातार भगवान में ही मन लगा रहता है भले ही क्रियाएं विविध प्रकार की हों, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो भी है वो अलग अलग प्रकार से होता रहता है लेकिन उन सभी क्रियाओं को हमने चेतना से करते हैं और इस प्रकार से चेतना भगवान में आविष्ट रहती है, भगवान के संपर्क में रहती है। तो ये अवस्था जो है ये काफी योगाभ्यास करने के बाद एक अष्टांग योगी अपनी चेतना को भगवान में लगा पाता है। पहले वो यम करता है, नियम करता है, आसन, ध्यान, उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि। तो ध्यान का स्तर तो भक्ति का भक्त का शुरुआत से होता है, उसका ध्यान लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है, जैसे कि नाम जप कर रहा है, भगवान को देख रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, तो अपने आप ही जो इंद्रियों का वृत्ति है वो भगवान की सेवा में लग जाती है तो ध्यान भी अपने आप लग जाता है। तो ये सहज है और भक्ति में एक और बात सहज इसलिए है क्योंकि भक्ति में जो हम क्रियाएं करते हैं वो वही क्रियाएं हैं जो हम भौतिक जगत में करते हैं, बस उसे करते भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये काली सीखना होता है। इसलिए भक्ति करना बहुत सहज है और दूसरी बात यह है कि जीवात्मा का ये स्वरूप है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करे, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करे, उनका श्रवण करे, उनका कीर्तन करे, जप करे इत्यादि जो भी है, तो इसके द्वारा बड़ी आसानी से मन लग जाता है भगवान में और मन लगाने की यही योग अभ्यास की यही परम सिद्धि है। लेकिन अगर कोई भक्ति का आश्रय नहीं लेता है तो उसका योग अभ्यास भी पूर्ण नहीं हो पाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, भक्ति की कृपा के बिना जो अष्टांग योगी उसको भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो खैर अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर के मान लीजिए आपकी भक्ति करता है और बाद में वो भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है तो उसे क्या गति होगी, तो उसकी चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। हरे कृष्णा।